ओम शांति। तो हम सब बाबा के बच्चे, बाबा के जो बने हुए गीत हैं, गीत के द्वारा हम सब ने बहुत कुछ सुने। जैसे कि गीत दुख सुख हार जीत जय पराजय में समान स्थिति के लिए कह रहा था, तो योगियों का ये निशानी बताई गई है। और योगियों के लिए तो कहते हैं कि योगी गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय में तपस्या करते हैं, और वहाँ पर तो सब प्रकार की कठिन परिस्थितियाँ होती है, और वो परिस्थितियों को झेलते हुए अपने को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, और वो आत्माएं लंबे समय से साधनारत रहते हैं। लेकिन बाबा ने हम सबको हठयोग और राजयोग का अंतर बताए हैं, जिसके कारण से हम सबको इस मार्ग पर चलना सहज हो गया है। नहीं तो बाबा कहते हैं कि जयपुर में जाकर के देखो, हठयोग की जो म्यूजियम बनी हुई है वहाँ पर कैसे उठपटांग योग कर रहे हैं लोग। इस प्रकार की योग अगर सबको करना पड़े तो सबकी हालत पतला हो जाती है। इसी ने बाबा ने बोला कि तन को इतना यातना दे करके उन्होंने साधना की है सिद्धियों को पाने के लिए, लेकिन उन सबको ये भी पता नहीं है कि साधना का यथार्थ अर्थ क्या है। उन्होंने तो शरीर को मोड़ना तोड़ना घुमाना फिराना, टांग ऊपर करना, हाथ एक टांग से खड़े होकर के तपस्या करना, इस प्रकार की जो विचित्रताएं दिखाई देता है जो कुंभ मेले में, जो 12 साल के बाद मेला लगती है, वहां पर तमाम प्रकार की आत्माएं इकट्ठी हो जाती है एक महीने के लिए। कितना महीना? एक महीना समथिंग लगता है, तो उसमें देखने को मिलता है। लेकिन बाबा ने तो हम सबको ज्ञान के राज और रहस्यों के द्वारा इतनी अच्छी तपस्या का रहस्य उद्घाटन किया है, जिसके कारण से हम कहीं भी रह करके तपस्या कर सकते हैं। तो तपस्या का जो आधार है, साधना का जो आधार है, श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति। तो श्रेष्ठ संकल्प करने के लिए तो हमको कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, और श्रेष्ठ संकल्पों के लिए बाबा ने हम सबको इतने वर्षों से श्रेष्ठ संकल्पों का इतनी ज्यादा ज्ञान जो दिए हैं, उसको हम प्रैक्टिकल में लाने के लिए संकल्पों से जो सृष्टि रची जाती है, बाबा ने बोला कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रचा। तो हम सब भी एक एक बाबा के बच्चे मास्टर ब्रह्मा हैं, और हम सब भी अपनी सृष्टि रच रहे हैं। तो इसलिए संकल्प के द्वारा हम सृष्टि कैसे रचते हैं, उन सब बिचारी आत्माओं को पता नहीं है, लेकिन साधना के मार्ग में लास्ट में अगर निष्कर्ष देखा जाए तो श्रेष्ठ संकल्प करना ही सबसे बड़ा तपस्या है। और श्रेष्ठ संकल्पों को हम कितना समय तक अपने पास रख सकते हैं, उसी स्वरूप में टिक सकते हैं, उसी स्वरूप में हम अपने आप को ठहरा सकते हैं, उसके द्वारा निकलने वाले वाइब्रेशन जो वातावरण वायुमंडल को स्वच्छ शुद्ध और पावन बनाती है। तो संसार की आत्माओं में द्वापर से यहाँ तक जितने भी साधना किए हैं उन्होंने, कहीं कहीं किसी किसी ने तो इसकी यथार्थ अर्थ को समझा है, लेकिन मोस्टली 99% आत्माओं ने इस राज और रहस्यों को समझ नहीं पाए। इसलिए आज का जो टॉपिक है मस्ताना योगी, मस्ताना योगी अर्थात हम सब संसार में रहकर के भी गृहस्थियों को, दुकान मकान, बाल बच्चे, परिवार को संभालते हुए उन सपने छोड़ने की बातें कही है। घर बार, बाल बच्चे, दुकान मकान सबको छोड़ के, राज्य को छोड़ के जंगल की ओर प्रस्थान किए। बाबा ने बोला कि इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां जंगल की ओर तपस्या करने जाएंगे तो जंगल को भी ऐशियाना बना देंगे, शहर बना देंगे, जंगल को भी मंगल कर देंगे। तो इसीलिए बाबा ने बोला यहाँ छोड़ना नहीं, यहाँ भूलना है। तो यहाँ पर बाबा ने हम सबको भूलने की जो मेथड बताई है, क्योंकि जाना तो सबको दुनिया छोड़ के है, लेकिन हम कितना जल्दी भूल सकते हैं संसार की बातों को, घटनाओं को, परिस्थिति को, विघ्नों को, वो हमारी सबसे बड़ी साधना है, भूलने की साधना। क्योंकि कभी कभी तो वो बातों को ऐसे पकड़ लेते हैं कई महीना वर्षों तक भी चलता है, भूल नहीं पाते। और उसको छुड़ाने के लिए ऐसा कोई केमिकल और कोई ऐसा औजार बना ही नहीं उसको छुड़ाने के लिए, मन के अंदर छिप जाती है, चिपक जाती है, तो उसको छुड़ाना कितना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पूरे जीवन ही बर्बाद हो जाता है, कई सारी बातें मन के अंदर पकड़ जाती है और धर जाता है, जो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाबा हम सबको हर दिन ज्ञान का बरसात करके हमें डुबोए रखने चाहते हैं, और ज्ञान युग में हमें भिगोए रहने चाहते हैं, और इसके कारण से आत्मा शक्तिशाली बनेगी, और उसके द्वारा हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। तो श्रेष्ठ संकल्पों से संस्कार परिवर्तन होगा, और श्रेष्ठ संस्कार से संसार परिवर्तन होने का बाबा ने हम सबको शिक्षा दिया है। तो आज हम जितना ज्यादा श्रेष्ठ संकल्प करते हैं उतने ही ज्यादा हमारा भाग्य बनता है, उतने ही ज्यादा हमारी वाइब्रेशन फैलती है और संसार को हम सहयोग का नोट दे सकते हैं। दुनिया में नोट बांट करके पुण्य करने का दावा करते हैं, कहीं कपड़ा बांटते हैं, कहीं राशन पानी बांटते हैं, भोजन लत्ता कपड़ा बांटते हैं, लेकिन वो तो सारे स्थूल सारे चीजें हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पर वहाँ दुनिया में तो ये सब बातें रहता है कि नोट के वोट के लिए नोट भी बांटते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा ने हम सबको जन्म जन्म का भाग्य बनाने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों का नोट सबको दो, क्योंकि आज यही चीज की कमी है। वातावरण वायुमंडल इतना प्रदूषित हुआ है जिसके कारण से संसार में जीना हर आत्माओं को कितना मुश्किल हो रहा है, और सूक्ष्म जो थेरोपी है सभी आत्माएं नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसके चपेट में सब आते हैं। इसीलिए बाबा हम सबको, हम सब ने जन्म जन्म से किए गए जो अच्छे बुरे संकल्प ये वायुमंडल में भूमंडल में ब्रह्मांड में अभी भी गूंज रही है, घूम रही है, और हिसाब किताब के रूप से हम सब से वो टक्कर लेती रहती है। इसीलिए सबसे पहले तो बाबा ने बोला कि सो परिवर्तन, तो सो परिवर्तन के लिए सिर्फ एक ही बातों के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो सो परिवर्तन ना मुश्किल है। इसीलिए बाबा ने चारों सब्जेक्ट उसके बाद में भी अनेक प्रकार की विधियां बताई है जिसके कारण से हम अपनी यात्रा को सुगम बनाने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए जो हम योगियों की बातें तो कई साल से सुनते आए हैं और पढ़ते भी हैं, योगी तपस्वी कैसे होते हैं, लेकिन उनमें जो इस प्रकार की जो अनबैलेंस लाइफ रही है जिसके कारण से वो घर बार परिवार तो छोड़ के जाते हैं लेकिन मन उसको नहीं छोड़ती है, माया उसको नहीं छोड़ता है, है ना, माया उसको नहीं छोड़ती है और पकड़ के रखती है। कितना भी भले दूर चले जाए, स्थान के रूप से दूरियां बन जाती है, लेकिन मन की जो करीबीता होता है वो किसी को भी इतना सहज नहीं छोड़ता है। इसलिए बाबा ने बोला कि घर बार परिवार छोड़ के दूर जा करके इतना बड़ा हिसाब किताब बना के हिमालय में जाके तपस्या की, लेकिन मन के अंदर जो भी संकल्प चलते हैं वो दिखने में तो आता नहीं है लेकिन साधना के मार्ग में बहुत बड़ा विघ्न डाल देता है। इसीलिए बाबा ने बोला कि तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाना है, लेकिन वहीं रहना है, वहीं रह करके अपनी स्थिति और अपनी अवस्था के ऊपर ध्यान देना है, और उसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो ज्ञान का जो कर्म सिद्धांतों का ज्ञान बाबा ने बताए, हिसाब किताब का जो ज्ञान हम सबको बाबा ने दिया है, तो उसके कारण से हम सबको ये सूक्ष्म थ्योरोपी को समझने में सहज हो रहा है, और सहज हुआ है इसीलिए हम सबको सूक्ष्म बातों को भी समझना, हमारी बुद्धि ने अच्छा काम किया है, इसीलिए हम घर बैठे बैठे अच्छे तपस्वी बन करके संसार को परिवर्तन करने का दावा कर रहे। इसका मतलब हम धीरे धीरे स्वयं के परिवर्तन को देखते हैं, स्वयं का परिवर्तन कहाँ तक हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना तक हमने परिवर्तन कर सके हैं, यह तपस्वियों की निशानी है। तो जो मस्ताना योगी होते हैं वो सदा ही एक रस रहते हैं, एक रस अर्थात कैसे भी परिस्थिति, कैसे भी विघ्न बाधा कठिनाइयाँ आ जाए उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कठिनाइयाँ हमको कुछ बिगाड़ पाएगी, क्योंकि हमारे साथ में स्वयं सर्वशक्तिमान विजयी बाप है, विजयी बाप का हाथ और साथ हमने पकड़ा है तो उसका कभी हार नहीं हो सकता है। जो हमारा उस्ताद ही इतना सर्वशक्तिमान है तो हमें कभी भी डूबने नहीं देगा ये भव सागर में। इसीलिए तपस्वियों की निशानी है एक रस स्थिति होती है, अचल अड़ल अवस्था होता है उनका, कैसे भी परिस्थिति उनके लिए तो जैसे कि खिलौना होता है और वो तो परिस्थितियों को आह्वान करते हैं, नहीं तो चेतना जगते जगते ठंडा पड़ने का चांस होता है। तो ऐसी परिस्थिति आते रहेंगे, वो एंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि अपने शरीर को और अपने मन को इतना तपाए हैं जिसके कारण से कोई भी बातें उनको बड़ी नहीं लगती, छोटी से छोटी लगने लग जाती है। तो तपस्या के माध्यम से हम सबको यही बनना है कि अचल अडोल एक रस अवस्था अपने जीवन में आ जाए, तो जीवन ही हमारा दर्पण है, दूसरी आत्माएं देखती है। छोटी सी परिस्थिति आ गई और हम हिलने लग गए, अप डाउन हो गए, तो देखने में आता है और कहते भी है। आप लोग बातें तो करते, बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन छोटी सी परिस्थिति में हिल जाते हो। इसीलिए हम सबको पल पल थर्मामीटर मिलते रहेंगे मापदंड करने के लिए, और हम कितना पानी में तैर रहे हैं, डूब रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, वो दुनिया की आत्माएं हम सबको बताती रहती है। इसीलिए गुफा और कंदराओं में जाके तपस्या किया होता तो कौन बताएगा तुम्हारे अंदर में क्या थी, कितना था, तुम कैसे चल रहे हो, है ना? कोई बताने वाले नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम सबको बाबा ने परिवार के बीच में, संगठन के बीच में, तो परिवार के बीच में अब सबके साथ रह करके हम अपना विकास कितना कर रहे हैं, अपनी उन्नति हम कितना कर पा रहे हैं, इसके ऊपर हम सबको पूरा फोकस रहता है। और हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और स्थिति थोड़ा बन जाती है और यथार्थ तो परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, तो उस बातें हमारे मन में आ जाता है तो हमें पश्चाताप होने लग जाता है। छोटी सी बातों में मैं गुस्से में आ गया, छोटी सी बातों में चिड़चिड़ापन आ गई, तो मन को खाने लगता है, वो चुभने लग जाता है और दूसरों को भी दिखाई देता है, चेहरे से चलन से दिखाई देता है। इसीलिए उस समय परिवर्तन नहीं भी करते हैं फिर भी पश्चाताप हमको परेशान करता है। तो अगले बारी के लिए हम तैयारी करते हैं कि अगले बारी इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की बातें अगर आ जाए तो मैं कैसे इसको सहज रूप से फेस कर सकता हूँ, क्योंकि हर दिन साधना तो चल ही रहा है, हर दिन चेकिंग अटेंशन तो हमारे बार बार चलते रहते हैं। तो जिसने उसको समझा है कि मेरे पास में ये कमी है और ये कमजोरी है, तो उसको दूसरी बारी के लिए अटेंशन रहता है। और अगर हर परिस्थिति और घटना को हमने सकारात्मक रूप से लिया है तो उसमें हर बार एनर्जी जमा होती है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्राप्ति होता ही है और हम उसके अनुभवी बन जाते हैं। और दूसरी निशानी होती है कि जो मस्ताना जो योगी होते हैं उनकी संतुष्टमय जीवन होता है, कैसी भी चीज मिले, कहाँ भी मिले, जहाँ भी मिले, जैसा भी मिले, क्योंकि वो सर्व गुणों का खान होते हैं और सर्व शक्तियों का खान होते हैं। इसके कारण से वो एक एक गुण और एक एक शक्तियाँ उनके जीवन में समा जाती है और उसकी निशानी है संतुष्ट मोड़ी आत्मा बन जाती है, संतुष्टता उनका धर्म बन जाता है। संतुष्टता के द्वारा जो वातावरण वायुमंडल बन जाता है उसके कारण से बाबा ने बोला है कि तुम जहाँ भी रहते हो, जहाँ जिस भी स्थान पर रहते हो, तुम्हारे संतुष्टता के वाइब्रेशन, प्रसन्नता के वाइब्रेशन वातावरण को शक्तिशाली बनाता है। तो योगियों की यह दूसरी निशानी है, वो संतुष्ट मणि होते हैं। संतुष्टता अर्थात कैसे भी परिस्थिति, विषम परिस्थिति, भीषण परिस्थिति आ जाए फिर भी वो संतुष्ट रहते हैं। रहने के लिए जहाँ भी मिले, जैसा मिले, हमारी जो प्रतिज्ञा है बाबा के साथ में, जहाँ बिठाओगे, जैसा खिलाओगे, जहाँ सुलाओगे, हम उसके लिए तैयार हैं। तो हम संतुष्ट रह जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, अपने आप को एडजस्ट किए होते हैं हम लोगों ने, और हम सब ने राज और रहस्यों को समझे हुए होते हैं, इसीलिए वो सारी चीजें हम सबको उतना ज्यादा परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आत्माओं के अंदर एक एक चीज को एक्सपेरिमेंट किया होता है। और थोड़ी सी भी कहीं किसी भी बात में स्वार्थ आ जाती है, कोई भी बातों के साथ लगाव होता है और जैसे कि आसक्ति आ जाती है, उस समय वो आत्मा को पीड़ा होता है कि इतने साधना करने के बाद में भी इस चीज के साथ में मेरा रगे कैसे चली गई। तो बार बार चेकिंग करते करते सहस्त्रों बार प्रयोग करके वो संतुष्ट मणि का दर्पण बन जाते हैं। और हर चीज में वो सदाई पॉजिटिव रहते हैं। और तीसरी में रहते हैं कि वो आत्माएं बेफिक्र बादशाह होते, बेफिक्र, क्योंकि बाबा ने बोला कि तुम अभी संगम पर कई प्रकार के बादशाह बन जाते हो। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेताज बादशाह, बेहद के बादशाह, बेहद के बादशाह, बादशाहों के बादशाह, इतने सारे टाइटल्स बाबा ने हम सबको दिए। अर्थात निश्चिंत जीवन होगा, किसी भी प्रकार की हलचल न होना, निश्चिंत। जैसे कि वो आत्माओं को हम सब आत्माएं ने भी स्वीकार किया है इच्छा मृत्यु का, तो जो काल से नहीं डरता है वो बेफिक्र रहता ही है। उसको काल का भय संसार की सभी आत्माओं को इतना परेशान करता है, लेकिन हम लोग ने तो इतना सुंदर ज्ञान के आधार से और अभ्यास के आधार से, एक्सपेरिमेंट के आधार से हम सबको अनुभव बाबा ने करवाए हैं। तो यहाँ पांच स्वरूप का जो हम अभ्यास करते हैं, तो यहाँ बैठे बैठे पांच मिनट, तीन मिनट, दो मिनट, एक मिनट भी अगर मिल जाता है तो हम अपने घर से बेघर हो जाते और बेखबर हो जाते हैं, और पांच स्वरूप का दर्शन करके सेकेंड में रिटर्न आ जाते हैं। तो ये अभ्यास हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है और बादशाही के नशे में पहुंचा देता है। और परम धाम जाने का घर भी साथ में याद है, आने वाली दुनिया भी याद है, और संगम की स्थिति क्या है, सेकेंड में अगर हम उड़ नहीं सके तो स्थिति की भी चेकिंग साथ साथ में हो रही है। तो सेकेंड सेकेंड में पांच स्वरूप का अभ्यास, ऐसी ड्रिल तो विश्व ब्रह्मांड में जितने भी मठ पंथ और धर्म है वहाँ कहीं भी ऐसी सिखाई नहीं जाती होगी, इस प्रकार के नॉलेज ही नहीं। पूर्ण ज्ञान तो संसार में किसी के पास नहीं है, हजारों को इकट्ठा कर लिया जाए तो पूर्ण ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञानी का ज्ञानी के साथ में, योगी का योगी के साथ में कभी भी इतना घनिष्ठ संबंध होते हुए दिखाई नहीं दिया है। इसीलिए ज्ञान संसार में अधूरा का अधूरा ही रह गया है। इसीलिए बाबा ने हम सबको इस प्रकार का अनुभव कराए हैं, और यह अनुभव के आधार से हम निश्चिंत जीवन जीते हैं। मृत्यु का कोई भय नहीं हम सबको, और दुनिया में भी साधु महात्माओं के लिए दिखाते हैं, जो मस्ताना योगी होते हैं उन सबके लिए भी दिखाते हैं। तो हम सब ने कई बार सुने हैं जो सिकंदर बादशाह ने भारत से कोई संतों को लेके जाने के लिए सोचा था, तो उन्होंने उसने बोला कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो उसको इसी बात में गुस्सा आकर के तलवार निकालने की धमकी दिया उसने, काट दूंगा बोल के, माना खत्म कर दूंगा, इस तरीके से धमकाया। तो उसने ऐसा जवाब दिया कि ऐसे तो हम हजारों बार मर चुके हैं, हमको मृत्यु से क्या भय है। तो इस प्रकार के अभ्यास साधु महात्माओं ने किए, तो हम सबको भी बाबा ने ये अभ्यास घर में रह करके, परिवार में रह करके, संगठन में रह करके करवाए। इसीलिए आए दिन ही बड़े परिवार में कोई न कोई जाता हुआ समाचार आता है, कोई न कोई हमारे आगे से गुजर जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका अभ्यास तो इसका जैसे कि बाबा के घर में तो जो मुख मीठा कराए जाते हैं, हलवा खिलाए जाते हैं, तो इसमें हलवा का मतलब है कि हल हो गया है समस्याओं का। तो इसीलिए बाबा ने हम सबको, क्योंकि सबका हिसाब किताब अपना है, जिसकी जितने दिन की वैलिडिटी थी उसका पूरा हो गया, आत्मा रिटर्न जर्नी हो गई, अभी वो आगे के लिए पाठ तय कर रही है। तो इसके कारण से तो इसीलिए यहाँ तो कहीं पर हमें बुलाए थे तो हमारे पूरे ही सेंटर जब गांव गए थे तो सेंटर में 10 दिन के अंदर ही अंदर कोई शरीर छोड़े होते हैं तो वहाँ जाना होता है। तो वहाँ पर जैसे हम लोग क्लास पूरा हो गए, पूरे गाड़ी करके कोई टेम्पो कोई रिक्शा करके गए हम लोग, तो नामी ग्रामी आदमी थे वो, तो वो बीच में याद भी कर रहे थे कि वो आए नहीं अभी तो कोई भी लोग बोल के, तो हमें सबके लिए एक सवालिया निशाना जैसा हो गया, किसी भाई ने आके बोला। तो हम सब गए तो उन लोग सब रिफ्रेश होके बैठे हुए थे 8 बजे के आसपास, तो हम लोग गए तो सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ बोलने के लिए बोला, तो कोई कुछ बोल रहे कोई कुछ बोल रहे। तो बाबा को मैंने बोला कभी तैयारी की नहीं थी, ऐसी जगह पर बोलने का आदत भी कम था, तो बाबा ने टच कराए कि और उस सब ने तो दुख की बातें ही सुनाए, कैसे कि दुनिया में मिलते जुलती बातें होती है ना, अपने लोगों ने भी ऐसे ही सुनाए, लेकिन बाबा ने ऐसे टच कराए कि हम सबको जाने का दुख तो है लेकिन वो आत्मा गई थोड़ी है, वो तो यहीं आने वाली है, आपके परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधव भाई भतीजे नाना चाचा काका बन करके आ जाएगा, तो जाने का दुख नहीं आने की खुशी में रहना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये तो कालांतर से चलती आई हुई जो विधान है, लेकिन हम सबको तो यह भर दिया गया कि गया गया गया, लेकिन बाबा ने हम सबको सिखाया वो गया नहीं है, वो रिफ्रेश होकर के आया नया बन करके नया जन्म लेकर के नया शरीर नया जीवन की शुरुआत करने वाला है। तो उसके लिए जितनी शुभ भावना और श्रेष्ठ संकल्प हम छोड़ेंगे वाइब्रेशन के रूप में, उसको और ज्यादा खुशी होगी और ज्यादा प्राप्ति होगी, वो आएगा जो मेहमान बन करके हर चीज उसको अच्छी रीति से मिलेगा करके हमने थोड़ी सी बातें सुनाई। तो लोगों ने बोला कि ये तो यूनिक बातें सुनाई आपने तो दुनिया में तो ये सब बातें रहता है, सबको पता नहीं रहता है। तो इसके बाद में आगे का जो पॉइंट है कि वो आत्माएं अनुभवी मूर्त होते हैं। अनुभवी मूर्त माना अनुभव तो संसार में हजारों प्रकार के होते हैं, लेकिन जो यहाँ का जो अनुभव है आत्मा अनुभूति और परमात्मा अनुभूति के अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। और दुनिया में इतनी ज्यादा तपस्या करते हैं साधक हैं, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं है, है तो भी थोड़ा सा है, क्योंकि आत्मा समझ के परमात्मा को याद तो करते नहीं, अपने को पांच फुट के इंसान समझ के तपस्या करते हैं, तो उस सारी चीजों की अनुभूति नहीं होती है, दिव्य गुणों का अनुभव नहीं होता है, दिव्य शक्तियों की अनुभूति नहीं होती है, बॉडी से न्यारापन का अभ्यास नहीं होता है। और आत्मा जब न्यारी बनती है तो परमात्मा बाप की प्यारी बन जाती है, इसका भी अनुभव नहीं है। तो हम सबको बाबा ने एक ही साथ सब कुछ अनुभव कराए, तो आत्मा निराकार है, आत्मा विदेही है, तुम जब विदेही स्थिति में पहुंच जाते हो टिक जाते हो तो बाबा की याद तुम्हें सोते ही और सहज आ जाती है। तो यह ज्ञान किसी के पास भी नहीं है, तो यह ज्ञान बाबा ने हम सबको बता करके सुना करके अभ्यास करा करके हमें भी परफेक्ट योगी बना रहे, मस्ताना योगी बना रहे। तो हम सब मस्ताना योगी इसलिए बन गए क्योंकि हम सबको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। द्वापर से कलयुग तक तुम बच्चों ने बच्चे इतनी चक्कर काटे हैं, तो मैं अब फिर आकर के इतना तकलीफ देने नहीं चाहता हूं, इसीलिए बाबा ने सहजयोग का नाम दे करके हम सबको हर बात से हल्का कर दिए, सहज कर दिए। तो इसीलिए तो बाबा ने बोला कि सेकंड सेकंड का महत्व है, तो हम सब भाग्य बनाने के लिए बाबा ने यहाँ का जो रूटीन बताए हैं अमृत वेले से लेकर के रात तक, कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू तो टाइम का है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम को ही लोग बर्बाद करते हैं, लेकिन बाबा ने उससे भी ऊपर की बातें बताए हैं कि टाइम को सफल करने से पहले संकल्पों को सफल करो, संकल्प ठीक होंगे तो टाइम स्वतः सफल हो जाएगा, क्योंकि टाइम को पकड़ने का कोई ऐसा हथियार नहीं है, औजार नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन तुम योग युक्त तो हो जाएंगे, निरंतर स्मृति स्वरूप होंगे तो समय स्वतः सफल हो जाएगा। और जो पांच में हमने पांच नंबर पॉइंट में निकाले कि जो साधना का जो पराकाष्ठता है श्रेष्ठ संकल्पों की, श्रेष्ठ संकल्प तो पहला भी बताए, क्योंकि साधना का जो निष्कर्ष श्रेष्ठ संकल्पों की स्मृति उत्पत्ति, तो श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा हम सारी दुनिया को चेंज करने का जो हमने ठेका उठाए, तो श्रेष्ठ संकल्प हम सभी आत्माओं का दौलत है, वो प्रॉपर्टी है। और जो हम चार चार पेज के हर दिन मुरली सुनते हैं वहां सारे श्रेष्ठ संकल्प ही होते हैं बाबा के, और एक को लाख गुना बढ़ाने के लिए भी बाबा ने फॉर्मूला बताए है, जितना विचार सागर मंथन करोगे तो संकल्प श्रेष्ठ होते जाएंगे, और श्रेष्ठ संकल्प संसार में जो चाहे सो कर सकते हो तुम। तो इसके कारण से हमें बाबा ने कोई इतना ज्यादा वो चीजें नहीं बताए जो हम कर न सके। तो ये श्रेष्ठ संकल्प हमारा आत्मा का सबसे बड़ा खुराक भी है और दौलत भी है, और जिसके पास में जितने श्रेष्ठ संकल्प होंगे परिस्थिति और समस्याओं को निपटाने में सहज होगा, और जिसके पास में श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक नहीं होगा वो बातें, कोई भी बातें आकर के अंदर बैठ गई उसको निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समस्या उसको निपटा देगी, और श्रेष्ठ संकल्प बच्चे कुछ जो भी रहे हुए हैं उसको भी निकाल के भगा देगी। इसीलिए उस चीज को हटाने के लिए हम सब यहाँ पर एक एक हर चीज में पॉजिटिव लेना मने क्या है, श्रेष्ठ संकल्पों की वृद्धि कर रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित हो रहे हैं, और इसके जो वायुमंडल जो बन रहा है उसके ऊपर हमारा, हम सब उसके ऊपर जैसे कि अनुभवी मूर्त ऐसे बन जाते हैं, वातावरण और वायुमंडल का रसपान भी हम करते हैं, वायुमंडल कैसे चेंज होता है उसके भी हम सब एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर अति सूक्ष्म थेरोपी है ये, और उसकी गहराई में जाकर के देखते हैं, जो कल राम भाई सुना रहे थे जो संकल्प करते प्रैक्टिकल में हो जाता था, तो इसका मतलब संकल्प ऐसी चीज है जो वायुमंडल में वातावरण में ब्रह्मांड में गूंजती रहती है, इसलिए इसके द्वारा हम इतनी बड़ी चीज कर रहे हैं। तो आगे हमने निकाले थे तो श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा हमारे चलन और चेहरे में सर्व प्राप्तियों के झलक और फलक दिखाई देगा। क्योंकि ये चीजें जब अंदर चली जाती है ना तो चेहरे से दिखाई देता है। बाबा भी मुरली में कहा करते हैं कि राजा का बेटा होगा उसको नशा होगा, निश्चय होगा मेरा बाप राजा है। साहूकार का बेटा होगा उसके फलक से झलक से पता चल जाएगा कोई संपन्न परिवार का बच्चा है। तो हम सब भी इतनी सारी प्राप्तियां हैं हमारे पास में, कितनी सारी प्राप्तियों के मालिक है हम सब, सर्व प्रकार की खजानों के हम मालिक है। तो ये नशा और निश्चय जितना ज्यादा होगा वो भी वाइब्रेशन फैलाने का काम करेगा, उसमें भी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो इसके द्वारा कितनी बेहद की सेवा होने लग जाती है। तो सर्व प्राप्तियां तो हम सबको पता है, गुणों की प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति, चिंतन की प्राप्ति, पवित्रता की जो प्राप्तियां हैं, आज भी बाबा ने बोला कि सर्व प्राप्तियों का प्रसाद बांटने वाले, आज से भी नोट की बातें होगी। तो यज्ञ सेवा के द्वारा दूसरों की सेवा करना, जैसे कि ऑलराउंड सेवा मिलना ही कितना बड़ा भाग्य बाबा ने बताए। तो उसके बाद में निकाले थे कि जैसे कि वो आत्मा है ना, जैसे कि सबके सहारे दाता बन जाती है, सैंपल बन जाती है, सिंपल जीवन द्वारा सबको सैंपलता का अनुभव कराती है, सारे दाता बन जाती है, सभी आत्माओं के लिए इंजन बन जाती है, एग्जाम्पल बन जाती है। जो चीज सामान्य दिखाई देता है ना, उस चीज को फॉलो करना जल्दी सहज हो जाता है। और जो 55 साल पहले हमारे जो बाबा मामा गए हैं, उनको खींच के लाने में तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कोई आगे समान व्यक्ति होगा तो उसको फॉलो करना सहज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उस चीजों को खींच के जीवन में हमने कितना उतारे हैं। आज हम सबको पता है कि बाप दादा के आगे, मम्मा के आगे, दादियों के आगे हम छोटे छोटे बच्चे ही लगते हैं, दीदियों के आगे। लेकिन संसार के बीच में कहीं और कोई बीके नहीं होते हैं, तो हमें वह सर्वे सर्वा बनना पड़ता है। हाँ, उस समय हम सबको लगता है कि हम भी कोई कम नहीं है, लेकिन हमारे पास में वो अनुभव होगा, वो अथॉरिटी होगी, वो हमारे पास में भरपूर खजाने होंगे, तो उस समय हम सबको वो सब कुछ दे सकेंगे। और सब कुछ देने के लिए सब कुछ भरना पड़ेगा पहले। अभी सबके बीच में लग ही नहीं रहा है कि हमारे पास में कितना भरा हुआ है। लेकिन कभी कभी गांव में जाते हैं, कभी कभी कहीं जाना पड़ता है, और सबसे अलग हम दिखाई पड़ते हैं, और हम सबको भी एहसास होने लगता है कि कुछ हमने भी वहां बैठे बैठे साधना की थी, उसका झलक और फलक यहाँ दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि ये चीजें है ना, बाबा ने बोला है कि जब सूरज अस्त हो जाता है ना, चांद भी, जब चांद भी 15 दिन में होता, आधा होता, अंधेरे में रहता है, तो तारे टिमटिमाने लग जाते हैं, तारे दिखाई देने लगते हैं। तो बाबा ने भी यही बोला है, माँ बाप जब अस्त माना गुप्त हो गए, तो बच्चे प्रत्यक्ष होंगे आगे जाकर के। और बाबा ने बोला है कि आगे जाकर के धरती के सितारों को देखने के लिए आत्माओं की कतार लगेगी। वो कौन था, कहाँ था, कौन है वो, क्योंकि धरती के सितारे जब चमकने लग जाएंगे तो सबके नजर होंगे, तो इसके ऊपर स्टडी होगी। और उसके बाद बाबा ने यह भी बताए हैं कि तुम्हें परीक्षण भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, ऐसे सर्टिफिकेट आप सबको नहीं देंगे। तो इसीलिए हम सबके सहारे दाता कितना बन पाते हैं। उसके बाद में ऐसी जो महान आत्माएं होती है, वो संकल्पों में सिद्धियां होती है उनकी। जो संकल्प करेंगे सफलता समाया हुआ होता है, संकल्पों में ताकत होती है, क्योंकि साधना के बल से संकल्पों में शक्ति आ जाती है, ऊर्जा भर जाता है, तो उसके कारण से वो आत्मा संकल्पों की सिद्धियां उसको मिल जाती है, और उसके कारण से वो आत्मा चाहे सेवा करना होता है, किसी का कल्याण करना होता है, किसी का उद्धार करना होता है, और उसकी संकल्पों की टचिंग भी होती है। जो सिद्धि स्वरूप आत्माएं होते हैं, अंदर का जो द्वंद, जो अंदर की जो लड़ाई झगड़े, मन का जो संघर्ष, जिसके खत्म हो जाते हैं, वो आत्माओं को सोते टच होने लगती है, सोते पुकार होने लगता है। और साधु संत महात्माओं की भी नाम वाला इसीलिए है क्योंकि उन्होंने भी कठोर तपस्या करके मस्ताना योगी बने हैं वो भी, लेकिन अनबैलेंस लाइफ तो थी उनकी, क्योंकि सभ्य समाज में अगर वो व्यक्ति बीच में आ जाते हैं आज, तो लोग उतनी नजदीक जाने के लिए डरते हैं, क्योंकि लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे मूंछ, दाढ़ियां, कई दिन से ठीक रीति से स्नान हुआ है नहीं हुआ, कहीं स्मेल भी नाम छोड़े ना, है ना, बहुत सारी बातें होते हैं। लेकिन बाबा ने हम सबको आधुनिक साधु बनाए, सन्यासी बनाए, त्यागी तपस्वी बनाए, आधुनिक सन्यासी हम सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन स्मृति में नहीं है, सब बाबा ने दिया हुआ है। तो बाबा को अर्पित करके, समर्पित अर्पण करके पहनते हैं, एक रुमाल भी अपने नाम पर नहीं है, क्योंकि सब कुछ बाबा को दिया हुआ है। तो इस कारण से हम सबको ये बातें करने में सहज हो जाता है। उसके बाद वो आत्माएं जो प्रकृति पति होती है, प्रकृति का अधीन नहीं होती है, चाहे अपने देह में नहीं फंसती है और न किसी के देह में फंसती है। नाम रूप की बीमारियां नहीं होती उनके पास में, वो सदाई बॉडी कॉन्शियस से ऊपर उठी हुई होती है। इसी इसके बाद ही तो साधनाओं में सफलता मिलती है। जब तक बॉडी कॉन्शियस हमारे पास में होता है रहता है, तब तक सिद्धियां हमको सबको भी नहीं मिलता है और संघर्ष करते रहना पड़ता है। जब बॉडी का भान से हम ऊपर उड़ जाते हैं तो चाहे दुनिया के साधक हो चाहे यहाँ हम सब बाबा के बच्चे, उनको सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती है। तो इसके कारण से वो प्रकृति के हलचल से मुक्त होती है। जो पांच तत्व और पांच विकार ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए और यहीं से अटैक करते हैं हम सबको, तो वो आत्मा प्रकृति पति होती है। प्रकृति के कभी भी गुलाम परवश नहीं होती है, इसीलिए वो सब आत्माएं हम सब प्रैक्टिकल में बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो फिर वो आत्मा सदा ही समर्पण भगवान भरोसे होते हैं, क्योंकि भगवान को सब कुछ दिया है और भगवान को अर्पित किया हुआ है। कोई ऐसे जैसे कि मुस्तफ फकीर के नाम से जाने जाते हैं, एक गुजरात में जामनगर साइड में बहुत बड़े संत हुए हैं, और भी हैं, तो वो भी पूरे जीवन भर लंगोटी लगा के निकाला उन्होंने, ठंडी गर्मी बारिश फागी कैसे भी परिस्थिति में, तो उन्होंने प्रकृति को जीते हुए दिखाते हैं। और कुछ भी होता है तो भगवान के ऊपर ही उनकी अर्पण था, प्रभु ने दिया है, भगवान ने दिया है, ऐसी संपूर्ण समर्पणता उनके पास में। तो आज हम भी तो एक छोटी छोटी बातें जब होता है तो बाबा ही जोड़ देते हैं, बाबा ही याद आ जाता है। तो उनको जब अंतिम का समय आया था तो पेट में कोई बीमारी हुई थी, पिट्ठियों में या तो कहीं किस स्थान पर, तो उसमें कीड़े आ गए थे। तो कीड़े वहाँ घूमते थे और थोड़ा सा झुकने से कीड़े नीचे उतर गिर जाते थे। और ये तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इसकी ट्रीटमेंट करो, ठीक हो जाओगे, ये तो प्रभु ने दिया है, भगवान ने दिया है, इनको मारना थोड़ी मैं चाहूँगा। तो गिरते हैं तो भी उठा के डालते थे। तो करते करते कुछ ही दिन के बाद फिर उनकी प्राण निकल गई। तो इसका मतलब उनकी जो भावनाएं होती है ना, भगवान के प्रति इतनी निष्ठावान होते हैं, आस्थावान होते हैं, कुछ भी होता है तो उनके ऊपर ही थोपते हैं वो लोग। इसी कारण से कई सारी बातों में तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आगे का सफर में मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाबा ने हम सबको इस प्रकार के हट नहीं सिखाए। हम सबको बाबा ने तो बोला कि संग में कि ड्राई फ्रूट भी खाना पड़े तो खाओ, थोड़ी सी सर्जरी करना पड़े तो भी करो। बाबा के हॉस्पिटल बाबा के बच्चे हैं और आगे के ये संगमयुग का देह की जो बॉडी की वैल्यू बताए हैं, इस वैल्यू का कितना, देह का कितना महत्व है, एक एक सेकंड सफल करने के लिए बाबा बोलते हैं। इसीलिए शरीर छूट जाए कब जानो जाने को मिल जाए, इस प्रकार के संकल्प नहीं करो। अपने आप को ऐसा तपस्वी बनाओ, एक एक पल सफल करो, बाबा इस तरीके से बोलते रहते हैं। इसके बाद में जैसे कि मान सम्मान की कभी इनको भूख नहीं सताता है, मान सम्मान से परे हो जाती है आत्माएं, अर्थात कोई मान दे सम्मान दे इस प्रकार की स्मृतियां रहती नहीं है। जैसे कि वो तो सर्वोच्च सत्ता ने जब हमें सम्मान दिया है, संसार की चीजों का क्या लेना देना है। जिस नजर से जिस नयन से भगवान को देख लिया, जिस कान से भगवान का सुन लिया और जिस दिल में भगवान बैठ गया है, और फिर बाहर में हम थोड़ी ऐसा कि मांगते हुए चलेंगे, यो मिले यो मिले, सबको देने का पाठ बाबा ने सिखाए, भरपूरता कराई है बाबा ने। इसीलिए ऐसी आत्माएं नाम मान शान की भूखी नहीं होती है। और ये लास्ट में है कोई आत्मा सिद्ध प्रज्ञ योगी बन जाती, स्थित हो जाती जीवन सिद्ध प्रज्ञ योगी की, जो गीता में बताए गए हैं सब प्रकार की बातें, लास्ट निष्कर्ष है वो, कैसे भी विषम परिस्थिति में वो उसको एडजस्ट कर लेती है। और वो आत्मा सर्वोच्च स्टेज साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित हो जाती है और संसार के खेल को जैसे कि साक्षी होकर के देखती है और इंजॉय फुल हो जाती है। बाबा ने भी बताए हैं कि जो इस ड्रामा को साक्षी, जैसे बाप इस ड्रामा को साक्षी होकर के देखते हैं ऐसे तुम भी देखो तो बाप समान बन जाओगे। तो सर्वोच्च स्टेज है साक्षी दृष्टा, और जो साक्षी होगा वही बाबा के साथी होगा, नहीं तो कोई ना कोई छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व हो रहा हो वो बाबा का साथी नहीं बन सकता है। क्योंकि बाबा का साथ पाने के लिए साथ तो हम मांग रहे हैं, लेकिन बाबा का साथी बन जाए तभी होगा जब किसी भी बात में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आज सुबह से लेकर रात तक अगर चेकिंग करके देखा जाए, देखना एक छोटी छोटी संकल्प भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही होती है, तो उसके कारण से हमारे जीवन की खुशी मजा वो छीना जाता है, लूटे जाते हैं। हम अपने आप को लुटा रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार का योगी बनना है। तो थोड़ी सी चिंतन करके आप सबके बीच में इन सारी बातों को थोड़ा सा सुनाने का जो मौका मिला, अवसर मिला दिया सुशील भाई सैफ सभी, तो आगे के लिए इसीलिए हम सब बाबा के बच्चे इसके अभ्यासी बनते जाए, ये हम सबका चाहना भी है, लक्ष्य उद्देश्य। इतने में ओम शांति।